मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 6 फरवरी 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं विवेक करनवाल, आप हैं रुड़की उत्तराखंड से, प्रज्ञेश बोरकर आप जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं और हिमांशु कुमार आप सीतामढ़ी बिहार से हैं। तो विवेक, प्रज्ञेश और हिमांशु आप तीनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज एक छोटी सी सूचना मुझे आप सबको देनी है और सूचना यह है कि मैंने आज एक उद्बोधन सुना या यूं कह लीजिए कि लेक्चर सुना और यह उद्बोधन लेक्चर क्या कहूं मैं इसे सही शब्द नहीं दे पा रहा हूं हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी का था जो उन्होंने संसद में दिया है जो उन्होंने लोकसभा में दिया है उसका एक छोटा सा हिस्सा मुझे सुनने को मिला हम लोगों ने सुना और खासकर उनका जो लेक्चर है वो कई तरह के जो हमारे आज के इश्यूज हैं उनको कवर करता है। क्या इश्यूज कवर करता है? जैसे आप उनके लेक्चर में पाएंगे कि भारत कैसे अपने वेस्ट को वेस्ट का मतलब है कचरा है ना जो आप क्या कहते हैं आपकी पन्नियां निकल रही हैं गंदा पानी निकल रहा है बाल निकल रहे हैं जो भी कचरा निकल रहा है कूड़ा करकट निकल रहा है उसको कैसे मैनेज करें इसके ऊपर बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने बताया है। लेकिन उनके लेक्चर में केवल एक ही बात केवल यही बात नहीं है ढेर सारी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। रोड के प्रोजेक्ट में क्या किया जा रहा है सरकार के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए धन की कमी है उन धन की पूर्ति उस धन की पूर्ति कैसे की जा सकती है कैसे प्राइवेट सेक्टर से पैसा आ सकता है कैसे भारत को अपना बिजनेस मॉडल तैयार करना चाहिए कैसे नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम अपने विकास के रफ्तार को बहुत तेज कर सकते हैं कैसे हम अपने युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं कैसे जो हम लगभग 7-8 लाख करोड़ रुपए का पेट्रोलियम पदार्थ सालाना आयात करते हैं कैसे उसकी मात्रा लगभग 2 लाख लीटर घटा सकते हैं 2 लाख टन घटा सकते हैं और केवल हमारे यहां जो दूसरे साधन हैं उनसे पेट्रोलियम पदार्थ तैयार करके कैसे हम अपने यहां के पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं कैसे हम अपने किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं इस तरह के ढेर सारे इश्यूज आपको इस लेक्चर में सुनने को मिलेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इसे सुने और सुनने के बाद जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट्स नोट करते चले जाएं अदरवाइज आप भूल जाएंगे। वैसे भी उन्होंने चूंकि टेक्नोलॉजी की बात कही है अलग अलग तरह के रसायन और दूसरी चीजों की बातें वो करते रहे हैं तो आप भूल जाएंगे आपको बकायदे नोट करते जाना चाहिए। दोस्तों ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में कितने अलर्ट हैं नई नई चीजों के बारे में कितना आप जानते हैं। अब आपके सामने संकट एक आ सकता है कि सर हम ये वीडियो कहां सुने कहां देखें तो इसके लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था की है और व्यवस्था ये है कि हमारा जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है और साथ ही साथ जो ट्विटर पेज है उस पेज उन पेज पर यानी कि ऑफिशियल फेसबुक पेज और ट्विटर पेज उन पेजेस पर यह वीडियो शेयर किया हुआ है वहां जाकर आप यह वीडियो सुन सकते हैं। मैं एक बार फिर से सजेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप यह वीडियो जरूर सुने ध्यान से सुने और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मालूम पड़ते हैं आप उन्हें नोट भी करते जाएं और जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं याद रखिए कि ये सारे के सारे टॉपिक आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से जुड़े हुए टॉपिक हैं और मेंस के लिए तो बहुत ही अधिक सहायक होंगे। मित्रों, मुख्य विषय के तहत आज मैं जो बजट पर तैयारी की पिछले दो दिनों से बात कर रहा हूं उसका समापन करना चाहूंगा, ताकि कम से कम एक टॉपिक आपके जेहन में बहुत अच्छे तरीके से स्थापित हो जाए। आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। जहां तक रेडियो समाचार की बात है उसमें कुछ खास ऐसी विशेष खबरें मित्रों नहीं है। आप देख रहे थे कि जो संकट चल रहा था सीबीआई को लेकर के और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के, उस मामले में हाई कोर्ट ने बकायदे थोड़ी सी झिड़की सी लगाई है और कहा है कि भैया ये सब जो मामले होते हैं ये मामले आपस में सुप्रीम कोर्ट ने आपस में सुलझा लेने चाहिए, ये ऐसे नहीं है जिनको कि आप बहुत ज्यादा बढ़ाकर इतनी तरजीह दें। और अब उन्होंने कहा है कि ठीक है, जो कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो कोलकाता में न मिले, वो पास में ही जो सीबीआई का जो ऑफिस है वहां चले जाएं और वहां सीबीआई को पूछताछ करने की उन्होंने अनुमति दे दी है कि वहां सीबीआई जो भी पूछताछ करती है आप वो जानकारी उन्हें दे दें। एक सिंपल सी खबर है, देखिए अभी आगे और क्या डेवलपमेंट होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है वर्टिकल खेती के बारे में, वर्टिकल एग्रीकल्चर। वर्टिकल खेती का मतलब है कि अभी तक तो हम जमीन पर खेती करते हैं, लेकिन वर्टिकल का मतलब है कि जमीन से आसमान की तरफ आप खेती कर रहे हैं। तो बट नेचुरल के वर्टिकल खेती का मतलब यही हो गया कि मान लीजिए कि आपने दीवार एक बना दी और उस दीवार में फिर ढेर सारे क्यारियां रख दी या आलमारियों जैसा बना दिया और उसमें मिट्टी लगा करके और फिर आप उस पर खेती कर रहे हैं। तो छतों पर है, बालकनी पर है, जो बहुमंजिला इमारतें हैं उन पर बड़े आराम से ऐसी खेती की जा सकती है, ऐसी चीजों की जो हल्के वजन की होती है। अब आप उसमें कुमड़ा तो नहीं उगा सकते, लेकिन दूसरे जो हल्के वजन के जो फसलें होती हैं आप ब्रोकली उगा सकते हैं, औषधीय पौधे उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स की भी बहुत सी चीजें आप उसमें उसके माध्यम से पैदा कर सकते हैं। भारत में धीरे धीरे ये खेती अब थोड़ा सा तेजी के साथ बढ़ रही है, स्पेशली बेंगलुरु है, हैदराबाद है और दिल्ली जैसे शहरों में अब धीरे धीरे ये जोर पकड़ रहा है। अब जानते हैं कि जमीन सीमित है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ती चली जा रही हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं चल रही हैं जिसकी शुरुआत हमारे यहां हरित क्रांति से हुई है। और फिर आप देख रहे हैं कि जो हरित क्रांति है ये दूसरे क्षेत्रों में भी अलग अलग क्रांतियों के नाम से विकसित होती चली गई है और कम से कम अब खाद्यान्न वगैरह के मामले में तो हम आत्मनिर्भर बन ही चुके हैं। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए अब वर्टिकल खेती पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया जाने लगा है और फॉरेन कंट्रीज में तो ये काफी कुछ होने भी लगी है। मेरा सजेशन है कि आप इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद इसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट भी कर लें। एक एग्रीकल्चर पर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें इस तरह के बिल्कुल जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होते हैं उन पर प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफी होती हैं। फ्रेंड्स, एक खबर आपके लिए, खबर क्या मतलब इसी का ही हिस्सा है कि करंट कंटेंट के तहत एक बहुत ही आज खूबसूरत आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया गया है, वो है लोकतंत्र में नोटा। आप जानते हैं नोटा का मतलब, नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। उस पर ये बहुत अच्छा आर्टिकल है और इसमें आपको दो तीन बहुत नए पॉइंट्स जानने को मिलेंगे। मैं वो पॉइंट्स की भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आप अपनी क्षमता पैदा कीजिए कि वो दो तीन कौन से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जामिनेशन के व्यू से हो सकते हैं और उन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, उन्हें आपको नोट कर लेना चाहिए। और करंट कंटेंट की जो उपयोगिता है मित्रों, इसके बारे में मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, राइट। अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। बजट के बारे में कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हुए मैंने तैयारी के तरीके पर बताया था और फिर हम लोग बात कर रहे थे कि जो अभी अंतरिम बजट आया है उस बजट को आधार बनाकर के किस किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, कुछ प्रश्नों के बारे में मैंने चर्चा की थी। एक दो प्रश्नों की तरफ मैं और आज इशारा करना चाहूंगा। उदाहरण के तौर पर अब आप देखिए कि जब हम बजट की बात करते हैं तो इसमें लोक लुभावने बजट को हम देख रहे हैं, इलेक्शन में भी लोक लुभावने वायदे किए जा रहे हैं और बजट में भी लोक लुभावने वायदे किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या लोक लुभावने वायदों के माध्यम से देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है, या आप इसे इस रूप में भी देख सकते हैं कि क्या हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम अपने इन लोक लुभावने वायदों को पूरा कर सकेंगे। यह भी एक बिंदु यहां खड़ा होता है, इस पॉइंट पर भी आप सोचने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी बजट आता है तो आप याद रखिए कि उसमें आंकड़े ज्यादा मायने नहीं रखते कि किन किन आंकड़ों को आप याद करेंगे, इन इन आंकड़ों को हम याद कर लें, ये वो आपका वेस्टेज है। आपको ध्यान इस बात का देना होगा कि इस पूरे के पूरे बजट में किन बातों पर जोर दिया गया है, फोकस किस पर है। इस हर बजट का अपना एक केंद्रीय बिंदु होता है। जैसे इस बार के बजट का देखिए केंद्रीय बिंदु क्या है, लोक लुभावने वायदे, सबको राहत देने की कोशिश, ये इस बार के बजट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से हर बार के बजट का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, उस पर आपको जोर देना होगा। और इसके बाद जिसकी चर्चा किन्हीं वजहों से बहुत ज्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली आपको उस पर फोकस करना होगा, ये इसका एक पार्ट है। मित्रों, इसका एक दूसरा पार्ट भी है और दूसरे पार्ट को मैं आपको एक अलग प्रश्न के जरिए आपके सामने रखना चाहूंगा। सन 2018 के ही जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में यानी कि मेंस में एक प्रश्न पूछा गया है, मैं प्रश्न आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वो प्रश्न है, बागवानी फार्मों के उत्पादन, उसकी उत्पादकता एवं आय में वृद्धि करने में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की भूमिका का आकलन कीजिए, यह किसानों की आय बढ़ाने में कहां तक सफल हुआ है। 250 शब्दों में लिखना है, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं। एसेस द रोल ऑफ नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इन बूस्टिंग द प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड इनकम ऑफ हॉर्टिकल्चर फार्म्स, हाउ फार हैज इट सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, ये प्रश्न पूछा गया है। अब आप देखिए कि यह प्रश्न है राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। अब ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर यह प्रश्न क्यों है, जब आप बजट को देखेंगे और आसपास के समय को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसी के तहत ये जो नेशनल बागवानी मिशन है, नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन है, उसको रिस्ट्रक्चर्ड किया गया है, उसका नाम रखा गया है पुनर्निर्मित, रिस्ट्रक्चर्ड राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो बट नेचरली कि चूंकि वह उसी का हिस्सा था इसलिए वो प्रश्न यहां पूछा गया है। जब 2018-19 का जब बजट पेश किया जा रहा था फ्रेंड्स, तो उसी समय हमारे वित्त मंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट ये दिया था कि ये जो बांस जिसे हम बैम्बू कहते हैं, ये हमारे देश के लिए हरित सोना है, ग्रीन गोल्ड है, इसको उन्होंने ग्रीन गोल्ड किया कहा। और बांस मिशन को भी उन्होंने पुनर्निर्मित किया, उसको भी रिस्ट्रक्चर्ड किया। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद बांस मिशन पर प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन बांस मिशन पर प्रश्न नहीं पूछा गया, राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर प्रश्न पूछ लिया गया। इसके माध्यम से मैं कहना कुल इतना चाह रहा हूं कि बजट में जब कोई इस तरह की नीतिगत घोषणा होती है या कोई बहुत महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन किए जाते हैं जो खासकर किसानों से संबंधित हैं या हमारे सोशल वेलफेयर से रिलेटेड हैं, तो उसे आपको पकड़ लेना चाहिए। गारंटी नहीं है कि उस पर पूछा ही जाए, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो मान करके चलिए कि उसके केंद्र में कहीं ना कहीं इस तरह की घोषणाएं जो बजट में होती हैं वो रहती हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा अलर्ट होकर के आप बजट पर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बजट के प्रति थोड़े से अवेयर हो जाएंगे, थोड़े से जागरूक होकर के सही सही चीजों को पकड़ लेंगे, तो एकाध दो क्वेश्चंस तो आपके बन जाएंगे जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर के। तो दोस्तों, मैं अब बजट पर तैयारी के अपने इस मुख्य विषय को इस डेली ऑडियो लेक्चर के माध्यम से ही अब समाप्त करता हूं। अब हम लोग नए विषयों पर बात करेंगे। जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स का सवाल है फ्रेंड्स, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है, मानस झा दिल्ली से, हेमंत परिहार पाली राजस्थान से, रुपिंदर कौर विर्क पश्चिम बंगाल, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से, राहुल शर्मा लुधियाना पंजाब से और अशरफ अली, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।